अध्याय तीन, जापान का आधुनिकीकरण का शेष भाग। विदेशी व्यापार, पृष्ठ संख्या 34। 1913 और 1929 के बीच विदेशी व्यापार में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त उपनिवेशों के साथ भी व्यापार आरंभ हुआ। जापान उपनिवेशों में अपना निर्मित सामान निर्यात करता था और वहां से खाद्य सामग्री एवं कच्चा माल आयात करता था। यह इंग्लैंड और औपनिवेशिक भारत के बीच हो रहे व्यापार जैसा ही था। जापान का तीव्र औद्योगिकीकरण उसके निर्यातों की बढ़ती मात्रा से साफ प्रतीत होता है। निर्मित सामान का भाग जापान के कुल निर्यातों में 1913 में 29% था, जो 1920 और 1936 में बढ़कर क्रमशः 44% एवं 59% हो गया। सूती धागों एवं कपड़ों, रेशम तथा रेशम का सामान जापान के निर्यात की मुख्य वस्तुएं थीं। जापान के मुख्य निर्यात बाजार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन थे। यदि व्यापार निर्बाध किस्म का होता तो जापान के व्यापार में और भी बढ़ोतरी हो सकती थी, लेकिन 1930 के दशक में जापान का पश्चिम के उन उन्नत देशों द्वारा विरोध आरंभ हो गया जो अपने अपने बाजारों में स्वयं का सामान निर्यात कर रहे थे। यह स्थिति जापान की विस्तृत आर्थिक नीतियों के अनुकूल नहीं थी। इस स्थिति से निपटने के लिए जापान ने कुछ राजनीतिक गुटों ने भौमिक विस्तारवाद की सिफारिश की, ताकि जापान भी एकाधिकार का लाभ उठाए और पश्चिमी राष्ट्रों की तरह बाजार प्राप्त कर सके। सेना ने इस प्रकार के विस्तारवाद का समर्थन किया और जो सरकारी अधिकारी ऐसी नीति का विरोध कर रहे थे उनके साथ हिंसक बर्ताव किया गया। सेना अपनी अधिकतर मांगों को मनवाने में कामयाब रही। युद्ध से संबंधित उद्योगों में भारी मात्रा में पूंजी लगाई गई। 1930 के दशक में भारी संख्या में कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में श्रम प्रवास हुआ, क्योंकि कृषि में उन्नति रुक गई थी। ऐसी दशा में श्रमिकों के वेतन में गिरावट आई। सेना ने राष्ट्र की विदेश नीति अपने हाथों में ले ली। 1937 में चीन से युद्ध आरंभ हो गया। अब औद्योगिक गतिविधियां युद्ध केंद्रित हो गई। खाद्य पदार्थों की कमी के बावजूद लोगों को लंबे समय तक काम करने पर बाध्य होना पड़ा। लोगों को इस प्रकार की दुखदायक स्थिति में ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सब कुछ झेलना पड़ा। शिक्षा, एजुकेशन। आधुनिकीकरण में शिक्षा के महत्व को आरंभ में ही पहचान लिया गया था। सारे राष्ट्र को शिक्षित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेजी पुनः स्थापन के 3 साल के अंदर ही शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति मंत्रालय मोम्बुशो की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार राष्ट्र के संपूर्ण आधुनिकीकरण की नीति के आरंभिक ढांचे में ही मेजी पुनः स्थापन के बाद आधुनिक शिक्षा प्रणाली आरंभ की गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तोकुगावा काल में शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं हुई। तोकुगावा काल में जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई वह न केवल कुलीन समुदाय वर्ग के बच्चों के लिए थी, बल्कि दूसरे वर्गों के बच्चों के लिए भी थी। विभिन्न समुदायों ने अनेक निजी शिक्षा संस्थाएं, जिन्हें तोराकोया कहा जाता था, खोल रखी थी। देश के विभिन्न भागों में ऐसे संस्थाओं की कुल संख्या मेजी पुनः स्थापन के समय लगभग 14,000 थी। 1850 के दशक में लगभग 40% लड़कों और 15% लड़कियों के नाम प्राथमिक विद्यालयों में दर्ज थे। मेजी कालीन जापान को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था तोकुगावा काल से विरासत में मिली वह थी आम प्रजा का शिक्षा के प्रति ऐसा रवैया जो शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को समझता था। लेकिन फिर भी जो शिक्षा प्रणाली तोकुगावा काल में विकसित हुई वह आधुनिक काल में प्रजा के लिए पर्याप्त नहीं थी। शिक्षा अधिनियम 1872 के अंतर्गत सरकार ने देश की 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांट दिया। प्रत्येक क्षेत्र को आगे 32 माध्यमिक विद्यालय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। फिर प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय क्षेत्र को 210 प्राथमिक विद्यालय क्षेत्रों में बांटा गया। इस योजना के आधार पर 1880 तक जापान में लगभग 25,000 प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो चुके थे। इस व्यवस्था के अलावा सरकार ने कृषि महाविद्यालय एवं वाणिज्य अध्ययन केंद्र जैसे विशेष विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन में आने वाली लागत का अधिकतर भाग लोगों को अपनी जेबों से देना होता था। 1873 में दी जाने वाली सरकारी सहायता कुल बजट का केवल 12% थी। मेजी शिक्षा कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, लेकिन इसके सामने गंभीर वित्तीय कठिनाइयां थीं। उदाहरणतया नई व्यवस्था को चलाने वाले अध्यापक एवं सामग्री अपर्याप्त साबित हुए। पाठ्य पुस्तकें बहुत कम थी और अध्यापक इनमें से अधिकांश का उपयोग करना नहीं जानते थे। 1876 में केवल 1/6 अध्यापकों को ही नई शिक्षा के तहत प्रशिक्षित किया गया था। शिक्षा बजट का एक भारी हिस्सा विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजने पर खर्च हो जाता था। 1873 में शिक्षा बजट का 1/8 भाग केवल विदेशों में भेजे गए विद्यार्थियों पर खर्च किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के स्थापित किए जाने के 20 वर्षों के अंदर ही देश के 99% लड़के और लड़कियां 6-6 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने लगे। 1875 में अमरीकी विचारों से प्रभावित एक शिक्षा अध्यादेश के तहत शिक्षा प्रणाली में अधिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वायत्तता को आरंभ किया गया। 1885 में मोरी अरिनोरी जापान के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए। मोरी, जो जर्मन तरीकों से काफ़ी प्रभावित थे, शिक्षा को देश के विकास से घनिष्ठता से जुड़ा मानते थे। उनका कहना था, सभी स्कूलों के प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कुछ करना है वह विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्कूल इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड डेट व्हाट एवर इज टू बी डन इज नॉट फॉर द पीपल्स बट फॉर द कंट्री। मोरी का विश्वास था कि प्रजा को शिक्षित करने के साथ साथ आज्ञाकारी बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा को दोहरा ढांचा दिया ताकि उनके दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब विद्यालय शिक्षा को राजनैतिक उद्देश्यों के अधीन करके देशभक्ति एवं राजभक्ति की भावना पर जोर दिया जाने लगा, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को अपेक्षाकृत स्वतंत्र रखा गया और उच्च स्तर के अनुसंधान एवं स्नातक प्रशिक्षण को महत्व दिया गया। 1877 में स्थापित टोक्यो विश्वविद्यालय को 1886 में टोक्यो शाही विश्वविद्यालय बना दिया गया। बुनियादी शिक्षा का ढांचा निरंतर बना रहा, इसलिए 1883 में बुनियादी शिक्षा कानून में परिवर्तन के लिए प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। 1913 तक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का विशिष्ट अधिकार भी राज्य ने अपने हाथों में ले लिया। 1875 में एक शिक्षा के महान सिद्धांत नामक शाही अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि पश्चिमीकरण के पोषक अपने आप में एक विदेशी सभ्यता ग्रहण करते हैं, जिसके मूल्य केवल तथ्यों को एकत्र करना और तकनीक है। फलस्वरूप ये मूल शिष्टता के नियमों का उल्लंघन करते हैं और जापानी पारंपरिक विधियों को हानि पहुँचाते हैं। इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्र को राजभक्ति और पैतृक पवित्रता के अपने मूल्यों की प्रधानता को जोरदार ढंग से जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे साम्राज्य के मूलभूत चरित्र की महिमा है और इसमें हमारी शिक्षा का स्रोत निहित है। यह दस्तावेज रूढ़िवादी विचारों की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बन गया और इससे जापानी समाज एवं विद्यालयों में एक पवित्र ग्रंथ की तरह माना जाने लगा। 1891 में पर्वों एवं अवकाशों पर प्राथमिक विद्यालयों के अनुष्ठानों के लिए विनियमों में यह प्रावधान रखा गया कि विद्यार्थी एवं कर्मचारी शाही चित्र के आगे झुके, अध्यादेश का पाठ करें तथा राष्ट्रीय गान गाएं। 19वीं शताब्दी के अंत तक जापानी शिक्षा का ढांचा इस प्रकार का था। क, लड़कों और लड़कियों के लिए 6 वर्षीय अनिवार्य प्राथमिक विद्यालय। ख, प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर लड़कों के लिए 5 वर्षीय माध्यमिक विद्यालय। दूसरा, विभिन्न तकनीकी विद्यालय तथा तीसरा, लड़कियों के लिए उच्चतर विद्यालय। ग, तीसरे स्तर पर पहला, लड़कों के लिए 3 वर्षीय उच्चतर विद्यालय तथा दूसरा, उच्चतर स्तर के तकनीकी विद्यालय। घ सबसे ऊपर 3 वर्षीय विश्वविद्यालय। यह शिक्षा प्रणाली सभी के लिए खुली थी और योग्यता पर आधारित थी। स्कूल आयु जनसंख्या जो 1873 में 42 लाख था, वह बढ़कर 1893 में 72 लाख था तथा 1935 में 1 करोड़ 13 लाख हो गई। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या 1900 में 30 हजार से बढ़कर 1940 में 2,30,000 हो गई। राष्ट्र के आधुनिकीकरण में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पढ़ी लिखी जनता ने तकनीकी विधियों को आसानी से समझा और अपना लिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक जापानी कृषक अपने द्वारा बनाई गई कृषक विधियों के बारे में विभिन्न पत्रिकाओं में अपने लेख लिखने लगे थे, जिन्हें पढ़कर दूसरे कृषक लाभ उठाते थे। इस शिक्षा प्रणाली में कई दोष भी थे। उच्च शिक्षा में स्त्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। शिक्षा का आर्थिक भार काफी मात्रा में लोगों पर थोपा गया। इस प्रणाली में व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का दमन किया गया तथा अंधी वफादारी एवं अनुशासन पर इतना जोर दिया गया कि बाद में इसका पूरा पूरा फायदा सैन्यवाद के समर्थकों ने उठाया।